ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना के लिए 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा इससे 91,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और कई अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार के कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में खरीफ मौसम में 2,10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने बिहार में 120 किलोमीटर से अधिक की लंबाई वाले 4 लेन के ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड पटना आरा सासाराम गलियारे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना रोजगार के अवसर पैदा करेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के लिए 2% महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा यह इस साल की 1 जनवरी से लागू होगा। इससे केंद्र सरकार के 48,66,000 कर्मचारियों और 66,55,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा।
एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए डीए और डीएनएस रिलीफ को 53% से बढ़ा के 55% किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/25। दिस विल बी अ वेरी बिग हेल्प फॉर ऑल द एम्प्लॉइज इन द गवर्नमेंट एंड द पेंशनर्स आल्सो।
लोकसभा ने आज समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024 ध्वनिमत से पारित कर दिया। ये विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925 का स्थान लेगा। ये कानून समुद्र के रास्ते माल परिवहन के संबंध में जहाजों से जुड़ी जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकारों और प्रतिरक्षाओं का प्रावधान करता है। इसके साथ ही ये केंद्र सरकार को विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी करने और लदान बिलों पर लागू नियमों को निर्दिष्ट करने वाली अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार भी देता है। राज्यसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन अब 1 अप्रैल 2025 को सुबह 11 बजे बैठक करेगा। निजी सदस्यों के कामकाज और विशेष उल्लेखों को पूरा करने के बाद सभापति ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। म्यांमा में आज लगातार भूकंप के 2 तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 7.7 और 6.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र सागाइंग के पास था। इस बीच म्यांमा ने नेपिता और मांडले सहित 6 क्षेत्रों में आपातकाल घोषित कर दिया है। उधर थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भारतीय दूतावास थाई अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति का निरीक्षण कर रहा है। भारतीय दूतावास ने थाईलैंड में भारतीय नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति में आपातकालीन नंबर 6666881921 पर संपर्क करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 अप्रैल को थाईलैंड की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजुमदार ने आज नई दिल्ली में बताया कि यह प्रधानमंत्री की थाईलैंड की 3री यात्रा होगी। श्री मजुमदार ने कहा कि भारत और थाईलैंड के बीच सदियों से सभ्यागत, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच $15 अरब का द्विपक्षीय व्यापार है, जिससे भारत थाईलैंड को लगभग $5 अरब का निर्यात करता है और लगभग $10 अरब का आयात करता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान में हो रहे व्यवहार पर करीब से नजर रखता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाता है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई में इंडियन ओपन स्क्वाश में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अभय सिंह का मुकाबला आज शाम 7:15 मिस्र के करीम एल टाकी से होगा। महिला फाइनल में अनाहत सिंह का मुकाबला रात 8:15 से हांगकांग की हेलेन टेंग से होगा। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।